ओम शांति। कमिंग अगेन टू द सेंटर ऑफ द फोरहेड। अब ये अभ्यास बन चुका है, अब ये मुझ आत्मा के लिए नेचुरल है। जैसे हम बीच बीच में रुककर पानी पी लेते हैं, काम करते करते एक मिनट के लिए बैठ जाते हैं तो आराम मिलता है, शक्ति मिलती है। ऐसे ही हम एक मिनट के लिए उस सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो आत्मा को शक्ति मिलती है, और उसकी वो शक्ति अगले कई घंटों तक काम करती है। देखें उस चमकते हुए सितारे को। मैं सत्युगी आत्मा हूं। I am a सत्युगी सोल, डिवाइन। इस वर्ड को पकड़ के रखें और इसको फील करें। डिविनिटी, रॉयल्टी, सेल्फलेसली सबको देने वाली आत्मा। हर कर्म श्रेष्ठ कर्म, हर कर्म श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ कर्म। हाईएस्ट वाइब्रेशन का कर्म और ऊपर उठाते जाएंगे अपने कर्मों की एनर्जी को। आई एम अ डिवाइन सोल, डिविनिटी मेरी पर्सनालिटी है, मेरी वाइब्रेशन है। डिविनिटी मेरे शब्दों में है, डिविनिटी मेरे कर्मों में है। आई एम अ डिवाइन सोल। ओम शांति। इस अभ्यास को कल से पक्का रखना है। सुबह तो हम मेडिटेशन करेंगे ही, लेकिन दिन में बीच बीच में रुककर आधा मिनट, एक मिनट, जैसे आप सबको सिखाते हैं कि पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठते हो, हर घंटा एक मिनट वॉक करके आओ। पूरा दिन स्क्रीन को देखते हो, हर आधे घंटे के बाद बस आईज को ऐसा ब्लिंक कर लो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आंखों को ब्लिंक कर लो, बस गर्दन को थोड़ा हिला लो, बस इतना सा चल के आ जाओ। ये इतना थोड़ा थोड़ा करने से आप कहते हैं कि शरीर फिट रहेगा। तो परमात्मा सिखाते हैं कुछ नहीं करना है, हर एक आधे घंटे के बाद एक मिनट रुक जाओ, वापस उस स्मृति को लाओ, वापस अपने आप को विजुअलाइज करो, वापस अपने आप को रिमाइंड करो, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। इजी है ये करना? ये करना इजी है? यस, इजी है। हॉस्पिटल में सब कुछ करते हुए बीच में कर सकेंगे? हमें क्यों करना है? जैसे आप हॉस्पिटल में सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं, एक को मिलते हैं दूसरे को मिलने से पहले हाथ धोते हैं, किसी को टच करने से पहले ग्लव्स पहनते हैं। कितना भी कितना भी कितना भी बिजी हो, कितने भी मरीज आपके बाहर खड़े हो, कितना ही लाइफ एंड डेथ की इमरजेंसी हो, लेकिन आप ये नहीं भूलते हैं, राइट है बात? तो टाइम निकलता है ना, कोई कहे नहीं टाइम नहीं है ग्लव्स पहनने का, उतनी देर में तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है वो सैनिटाइजेशन आपकी प्रोटेक्शन है, वो सैनिटाइजेशन उस पेशेंट की प्रोटेक्शन है, और वो सैनिटाइजेशन नेक्स्ट पेशेंट की भी प्रोटेक्शन है। ये भी वही है, हर एक जिनसे हम मिलते हैं वो अपने अपने एनर्जी में आ रहे हैं, एंड नॉट मेनी पीपल आर गोइंग टू कम हैप्पी इन टू अ हॉस्पिटल, राइट? दे आर नॉट कमिंग हैप्पी। बीमार हुए ही क्यों, कोई ना कोई इमोशनल ब्लॉकेज तो पहले से ही है, फिर बीमारी आ गई तो उसका, फिर उसके साथ फाइनेंशियल प्रेशर, फिर काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है, बहुत सारा बैगेज होता है हर एक के माइंड पर। तो ये इसको विजुअलाइज करना, इवन अगर आप 5 मिनट हर पेशेंट के साथ स्पेंड करते हैं तो पेशेंट प्लस केयर गिवर, ठीक है, बोथ आर नॉट इन द बेस्ट इमोशनल स्टेट। तो नाउ यू हैव टू विजुअलाइज दिस सीन, यू आर ऑन दिस चेयर, दिस इज योर टेबल एंड अक्रॉस योर टेबल, हर 5-10 मिनट के बाद 2-3 लोग बैठ रहे हैं जो इमोशनली बेस्ट वाइब्रेशन में नहीं है, मतलब वो एक इमोशनल इन्फेक्शन कैच करके आपके पास आ रहे हैं, और आप बिना कुछ अपनी प्रोटेक्शन किए हर एक से मिलते जा रहे हैं। और वो रीजन है कि आप कहते हैं कि डॉक्टर्स अर्थात स्ट्रेस, इट्स नॉट द वर्क, इट इज जस्ट अबाउट मीटिंग पीपल इन पेन एंड नॉट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। जब कोविड था आप ऐसे नहीं मिल रहे थे ना, बीच में वो प्लास्टिक शीट गिरी हुई थी ना, यस, वो भी डली हुई थी, वो पहना हुआ भी था, वो मास्क भी 2-2, 3-3 पहने हुए थे, सुबह से रात इतनी सेवा कर रहे थे, कितना मुश्किल होता है इतने मास्क पहनना, वो फिर वो भी पहनना, फिर वो भी डालना, बट आपने कुछ स्किप किया नहीं, क्योंकि मालूम था एक गलती और कितने लोगों का भाग्य चेंज हो जाएगा। So we take utmost care of everything that's visible with this eyes. Now onwards, we will also take care of what is not visible, and that is vibration. तो जब आप बीच बीच में ये 1 मिनट के लिए भी करेंगे, आपके पास 1 मिनट नहीं होगा, आपके पास 10 सेकंड तो होंगे, कोई 2 लोग उठ के जाएंगे और 2 लोग उठ के आएंगे, 10-20 सेकंड तो आएगा कि नहीं बीच में आएगा? आएगा? Use that 20 seconds. Use that 20 seconds. Visualize करो, मैं आत्मा, परमात्मा की शक्तियां मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे इनको जा रहे हैं। इस विजुअल को क्रिएट करिए अभी सामने, यहां मैं आत्मा। अब हम परम धाम नहीं जा रहे, हमारे पास 20 seconds में परम धाम नहीं हम जा सकते, कोई बात नहीं, हम बाबा और परमात्मा की एनर्जी परम धाम से यहां लेकर आएंगे, ठीक है? जब थोड़ा टाइम मिले तो वहां जाना। आपको लगे नहीं मेरे पास सिर्फ अभी 10 सेकंड है, आई कांट सिट एंड डू ऑल दैट राइट नाउ, नो प्रॉब्लम, मैं आत्मा यहां, परमात्मा की शक्तियां मुझ पर पड़ रही हैं, और मुझसे इधर सामने, विजुअलाइज दिस शावर फ्रॉम मी टू हियर। इजी है ये करना, इजी है ये करना। जब आप ये करेंगे तो जो आपके सामने आकर बैठेगा उसको आपसे कैसी एनर्जी मिलने वाली है, और जैसे ही एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, अ हायर एनर्जी, इसका मतलब लोअर एनर्जी कैन नॉट कम हियर, फिनिश, दैट इज प्रोटेक्शन, कुछ नहीं और करना है। तो इसमें 2 बेनिफिट हो गए, एक आपकी एनर्जाइजिंग हो गई, जो हम फिजिकली भी थक जाते हैं ना, सोल कॉन्शियस मेडिटेशन 10-10, 20-20 सेकेंड भी प्रैक्टिस करो तो थकावट खत्म हो जाती है, इतना इंपैक्ट है उसका। तो आप सिर्फ ये विजुअलाइज करो, परमात्मा से शक्ति की रेज मुझ पर, मुझसे उन पर, मुझ पर, मुझसे उन पर, यहां से यहां, तो उसकी एनर्जी मुझ पर, उसकी एनर्जी मुझसे उनको, तो उनकी एनर्जी मुझ पर नहीं आ सकती है। यू विल सेल थ्रू द एंटायर डे. अभी क्या होता है, सुबह हमारी एनर्जी हायर होती है लेकिन दिन तक शाम तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है. सिर्फ हम फिजिकली नहीं थकते, हम इमोशनली डाउन होते हैं क्योंकि वी आर इंटरैक्टिंग विद पेन. जब आप ऑपोजिट करेंगे कि ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप सुबह जहां होंगे आप बाय द एंड ऑफ द डे उससे भी हायर चले जाएंगे क्योंकि आपने दिन में बार बार क्या कर लिया होगा, फिर से मेडिटेशन एंड रिसीविंग सो मेनी ब्लेसिंग्स. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट विल नॉट मेक यू फील फिजिकली फटिग्ड. यहां आप 4 बजे उठ रहे हैं ना सुबह, तो एक्चुअली आप कम नींद पर चल रहे हैं. यहां जिस नींद की आपको आदत है या डेली के जितने घंटे हैं उससे कम नींद पर चल रहे हैं. यहां सभी रोज 3:30 बजे उठते हैं 365 डेज, और खाली तो बैठे नहीं है, पूरा दिन फिजिकल भी बहुत काम कर रहे हैं. लेकिन जब हम इस प्रैक्टिस को साथ में जोड़ते हैं, बॉडी फटीग्ड फील नहीं करती है, क्योंकि बॉडी भी फटीग तब फील करती है जब माइंड टायर्ड होता है. अभी हम हॉलिडे पे जाएं, पहाड़ों पे ट्रेक करें, इधर उधर चढ़ें, बड़ा ही मजा आ रहा होता है, हम थके हुए नहीं फील करते क्योंकि माइंड बड़ा वाइब्रेंट होता है. सो इट इज ऑलवेज माइंड ओवर बॉडी, माइंड ओवर बॉडी. अगर माइंड को एनर्जाइज कर दिया, बॉडी की थकावट ऐसे ही कम हो जाएगी एंड यू विल फील एज वाइब्रेंट एज यू वर फीलिंग इन द मॉर्निंग एंड ग्रेजुअली एवरी डे हायर एंड हायर. इससे क्या होगा, हमारे से रेडिएट होती हुई हर थॉट, हमारे मुख से निकलता हुआ हर शब्द और हमारा उनके साथ हर बिहेवियर कैसे शिफ्ट होने लग जाएगा. जब हम थके हुए होते हैं तो थोड़ी सी हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है ना. पहले दिन आपको सचिन भाई ने पूछा था कि क्या आपके कोई इरिटेटिंग पेशेंट्स हैं, हैं नहीं हैं, हैं इरिटेटिंग पेशेंट्स हैं, अब नहीं है ना. देखो इसलिए आपको बोला था, जब आप यहां आओगे इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बेनिफिट यू, इट इज गोइंग टू बेनिफिट योर पेशेंट. कितनी बड़ी चेंज है कि आज से मेरे मन में अपने पेशेंट्स के प्रति कभी ऐसा नहीं निकलेगा कि वो इरिटेटिंग है. इमेजिन सिटिंग अक्रॉस देम विद दिस थॉट इरिटेटिंग यू, कौन सी एनर्जी जाएगी, कौन सी एनर्जी जाएगी. तो भले हम बेस्ट इलाज लिख रहे हैं, भले उनका शरीर बेस्ट ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने कर्म कौन सा कर दिया, एक दर्द में आए हुए व्यक्ति को मैंने क्या दे दिया. कल हमने देखा था ना, बच्चे दर्द में हो तो उनको दर्द नहीं देना चाहिए, इसी तरह पेशेंट भी दर्द में आता है. हाँ हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, हाँ हो सकता है इतना बोलने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा, हो सकता है वो इंटरनेट पे सब कुछ ऑलरेडी स्टडी करके आ गए और सिंपल चीज को वो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, हो भी सकता है उनका टॉलरेंस लेवल बहुत घटा हुआ है, लेकिन वो तो हमारा पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है. और अगर वो गलत व्यवहार कर भी रहे हैं तो वो उनका कर्म है, उनका कर्म मेरे कर्म को नहीं बिगाड़ सकता. अब क्योंकि अगर मेरा कर्म बिगड़ा, बिगड़ा मतलब इवन इन माई थॉट्स, इफ आई से हाउ इरिटेटिंग, हाउ कैन दे बी लाइक दिस, देन आई एम कैचिंग दैट इन्फेक्शन ऑफ इरिटेशन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इन्फेक्शन विल गो फ्रॉम मी टू द नेक्स्ट पेशेंट, क्योंकि मैंने अपने ऑरा में ट्रैप कर लिया ना वो कर्म करके. और अगर 3-4 बार ऐसा कर लिया दिन में तो शाम को कहां जाएगा ये इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन शाम को कहां जाएगा, घर जाएगा. तो अगर डॉक्टर्स कहेंगे डॉक्टर है तो स्ट्रेस है ही, स्ट्रेस है ही, फिर डॉक्टर को साथ में ये भी रखना पड़ेगा कि फिर हमारे बच्चे फिर उतने पावरफुल नहीं बनेंगे अगर हम रोज ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेस हम रोज घर लेकर जा रहे हैं. इट्स द एयर दैट दे आर ब्रीदिंग एवरी डे. तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने कर्मों को कैसे रखना है. तो कौन इरिटेटिंग है, हमेशा याद रखें सामने वाला दर्द में आया है. जो बीमारी आपके लिए एक नॉर्मल चीज है क्योंकि आप रोज उसके साथ काम करते हैं, सामने वाले के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है. अभी वो उसको कुछ नहीं पता, उसको क्या हो गया है, उसको कितना पैसा खर्चा लगने, वी हैव टू गेट इन टू देयर माइंड्स एवरी सिंगल डे. फिर वो कितना भी गलत व्यवहार करेंगे हम उनको रोकेंगे, हम कहेंगे देखो मेरे पास इतना ही टाइम है, बाकी क्वेश्चंस आपके मेरा ये जूनियर आंसर करेगा। प्यार से हाथ पकड़ के उनको बोलो, वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहां से बोलेंगे ये बात, लेकिन यहां से सोचेंगे कितना इरिटेटिंग है, कितना बोली जा रहा है, मुझे लेट हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या, तो वो कुछ नहीं समझेंगे आपको और वो नाराज होकर बाहर चले जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी से फ्रॉम हियर, इट्स अबाउट व्हाट वी से फ्रॉम हियर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बिहेवियर लास्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्ड्स सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? तो भले आपको सिखाते हैं कि हर पेशेंट का नाम याद रखो, आप उसका नाम याद रखेंगे और बात करेंगे तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, अच्छा है, लेकिन मेरा नाम कोई याद रखे ना रखे कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है। लेकिन सामने से अगर मुझे बहुत ही एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी मिलती है ना, दैट इज एवरीथिंग, दैट इज एवरीथिंग। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग दिस जर्नी, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विच नोबडी टॉक्स अबाउट। लेकिन सबसे ज्यादा वो आपको लोगों की वाइब्स फील होती है, आप में से किसको लोगों की वाइब्स फील होती है? फील होती है ना, तो बस याद रखना लोगों को भी मेरी वाइब्स फील होती है, लोगों को भी हमारी वाइब्स फील होती है। और इसलिए अपनी वाइब्स को हमें हमेशा कैसे रखना है? साफ, क्योंकि वो हमारा कर्म है। जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, तो मन सबसे पहले क्वेश्चन क्या करता है? कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और फिर उस टाइम सब प्यार से कह देते हैं ईश्वर की मर्जी, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल। अभी तो हमने देखा ना 3 दिन से, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर हूज विल, किसकी मर्जी से हो रहा है सब कुछ? परमात्मा की मर्जी से अगर भाग्य लिखे जाते तो आपके हॉस्पिटल खाली होते ना, होते हॉस्पिटल खाली? आपको लगता है भगवान किसी के भाग्य में बीमारी लिखेगा? आप अपने बच्चे के भाग्य में बीमारी लिखेंगे नहीं, तो वो हमारे भाग्य में बीमारी क्यों लिखेगा? वो हमारे भाग्य में अकाली मृत्यु क्यों लिखेगा? यंग डेथ क्यों लिखेगा? वो हमारे भाग्य में कोविड क्यों लिखेगा? वो हमारे भाग्य में वॉर क्यों लिखेगा? वो कैसे लिख सकता है? लेकिन पता नहीं किसने कहा, अच्छे भाव से कहा होगा कि परमात्मा की मर्जी से सब हो रहा है, लेकिन वो चलते 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 हमारा ब्लेम गेम हो गया कि जो कर रहा है कौन कर रहा है? वो कर रहा है, तो ठीक भी किसको करना है? उसको करना है, तो हम उसको बोलते रहते हैं मेरा भाग्य ठीक कर दो। फिर वो नहीं ठीक कर रहा तो हम दूसरों को पूछते हैं, क्या आप मेरा भाग्य ठीक कर दो, कुछ बता दो जिससे ये दशा चेंज हो जाए। भाई वो दशा डाली किसने? डाली किसने? किसने डाली है? उंगली रखो, हाँ ये बस ये याद रखना, उंगली इधर रखनी है हर बार, ये किया किसने? तो 2 बिलीफ सिस्टम बचपन से सुने थे, एक सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, दूसरा सब कुछ मेरे कर्मों का परिणाम है। अगर भगवान की मर्जी से भाग्य होता सबका भाग्य परफेक्ट होता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर भगवान की मर्जी से भाग्य होता तो सबका भाग्य इक्वल होता। आप अपने बच्चे को कम और ज्यादा देंगे डेस्टिनी में? नहीं ना, वो भी हमें कम और ज्यादा नहीं दे सकता। आज तो कितना वेरिएशन है डेस्टिनी के अंदर, कोई बच्चा पैदा बीमारी के साथ हो रहा है, कोई 100 वर्ष की आयु तक परफेक्ट चल रहा है, इतना बायस कैसे हो सकता है? कोई पैदा हो रहा है एक बहुत बड़े मकान में, कोई पैदा हो रहा है जहां कमरा भी नहीं है रहने के लिए, कोई पैदा हो रहा है जिस परिवार में 10 लोग हैं, कोई पैदा हो रहा है उसकी मदर ने उसको अबैंडन कर दिया, ये क्या परमात्मा लिखेगा इतना वेरिएशन? देन तो वो बहुत बायस्ड है। हम भी ऐसा ना करें अपने बच्चों के साथ, वो कैसे कर सकता है? कर्म हमारे परफेक्ट हैं, लेकिन कुछ कुछ हमसे गलतियां होती हैं, एंड कर्म हमारे इक्वल नहीं है। हरेक के कर्म अलग अलग हैं, और इसीलिए भाग्य हरेक का अलग अलग है, और भाग्य हरेक का परफेक्ट है, लेकिन बीच में कुछ कुछ आ जाता है। तो आज एक बिलीफ सिस्टम को खत्म करते हैं कि जो कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है। आप इसको बोलो, जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? हमारी नहीं, मेरी मर्जी से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, और जो कुछ ठीक करना है वो किसने करना है? मैंने करना है। सो मच पावर किस किस के पास नहीं जाते हम कि हमारा भाग्य ठीक कर दो। परमात्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है, तो हमने सोचा भाग्य विधाता मतलब जो भाग्य लिखता है, भाग्य विधाता मतलब जो भाग्य लिखता है नहीं, भाग्य लिखने का विधान सिखाता है, द मेथड टू राइट योर डेस्टिनी। आप अपने बच्चों को कर्म का ज्ञान दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को कहते हैं ऐसा करो ऐसे नहीं करो, ज्ञान देते हैं। आप अपने बच्चे को कहते हैं मैं आपके साथ बैठा हूं आप ये करो, आप अपने बच्चे को सपोर्ट एंड पावर एंड प्यार देते हैं, लेकिन बच्चे का कर्म कौन करेगा? बच्चे का कर्म कौन करेगा? वो बच्चा ही करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस कर्म का जो कॉन्सिक्वेंस आएगा वो किसके पास आएगा? उसके पास ही आएगा। जब उसके पास वो कॉन्सिक्वेंस आएगा आप फिर उसको ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, मैं आपके साथ बैठा हूं। तो परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं। हम 3 दिन से सही कर्म करने का ज्ञान सीख रहे हैं। सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे? तो परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं। मेडिटेशन से हमें सही कर्म पर चलने की शक्ति भी मिलती है। हम सबको पता है सही क्या है, बट वी सेड बट गुस्सा आ जाता है, बट बुरा लग जाता है, बट जेलेसी हो जाती है, बट कंपैरिजन आ जाता है। दैट बट इज ओनली बिकॉज ऑफ सोल पावरलेस। तो ज्ञान के साथ योग चाहिए, एक से नहीं होगा। सिर्फ योग करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं मिल रहा कि थॉट प्रोसेस कौन सी क्रिएट करनी है। और सिर्फ ज्ञान लेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करने की शक्ति नहीं है। सो ज्ञान इज लाइक डाइट, योग इज लाइक एक्सरसाइज। यू कैन नॉट बी फिट विद वन, वी नीड बोथ, डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ। बहुत सारा खाना खा लिया लेकिन हिले ही नहीं, बीमार हो जाएंगे। खाना नहीं खाया भागते रहे, बीमार हो जाएंगे। वी नीड बोथ। सो ज्ञान और योग दोनों को इंटीग्रेट करना है अपने लाइफ के अंदर। तो परमात्मा हमें ज्ञान और शक्ति और प्यार देते हैं, कर्म हमारा है और परिणाम भी हमारा है। अब कर्म है क्या चीज? 3 चीजें, एवरी थॉट, एवरी वर्ड, एवरी बिहेवियर। आज दिन तक हमने थॉट्स को कर्म में काउंट नहीं किया था। हम कहते थे मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की, मैंने उनके साथ बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से बिहेव किया, तो मैंने अपने कर्मों को टिक कर दिया, वेरी गुड, ऑल गुड कर्मा टुडे। कर्म मीन्स एनर्जी दैट रेडिएट्स फ्रॉम मी इनटू द वर्ल्ड, दैट इज कर्म। इसको विजुअली याद रखना, एनर्जी जो मेरे से निकलकर बाहर जाती है वो है मेरा कर्म। सो मेरी इंटेंशंस, मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर। तो एक्चुअली सबसे ज्यादा जो कर्म है वो थॉट्स एंड फीलिंग्स है, वर्ड्स एंड बिहेवियर तो कम होते हैं। सो एनीथिंग दैट आई एम क्रिएटिंग इज कर्म, एंड एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू मी। एनर्जी कौन से डायरेक्शन में? ऐसे। पहले एनर्जी कौन से डायरेक्शन में? ऐसे। दूसरे एनर्जी कौन से डायरेक्शन में? ऐसे। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू मी, टू मी मतलब हेल्थ ऑफ माई बॉडी, इट्स अ सिचुएशन, टू मी। एनीथिंग विद पीपल, रिलेशनशिप्स, टू मी। एनीथिंग इन प्रोफेशन कमिंग टू मी, दिस इज रिटर्न ऑफ कर्मा। सो ये कर्म है, ये डेस्टिनी है। जो मैं आत्मा कर रही हूं कर्म है, जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा भाग्य है। हो गई इक्वेशन क्लियर? इस विश को इसको करो हाथ के साथ, ये फिट होना चाहिए। जो हम थॉट, वर्ड, बिहेवियर, ऐसे जाएगा, कर्म है। एनीथिंग याद रखिएगा, माई एवरी थॉट इज क्रिएटिंग माई कर्मा, ये कर्म है। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू मी, ये मेरी डेस्टिनी है। इंपॉर्टेंट इज ये जो मेरे साथ हो रहा है ये किसने डिसाइड किया? मैंने। कब डिसाइड किया? जब ऐसे फेंका था, बस। अब लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल, अब लाइफ बहुत इजी हो जाती है इसके बाद। नहीं तो इसको ब्लेम, उसको ब्लेम, जोडियक साइन को ब्लेम, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को ब्लेम, वास्तु को ब्लेम, न्यूमरोलॉजी को ब्लेम, कलर को, सब पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं। सबके पास जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, बट हाईएस्ट पावर आपके पास है और वो यहां रहती है, वो यहां रहती है। सब लोग शादी जन्म पत्री मिलाकर ही करते हैं, फिर इतने डिवोर्स क्यों हो रहे हैं आज? मैच करके किया था ना, जन्म पत्री भी मिलाई थी, शुभ दिन भी निकाला था, शुभ मुहूर्त भी निकाला था और शुभ मुहूर्त पे शादी की भी थी, वास्तु का मकान भी खरीदा था। और बताओ, फिर तो डिवोर्स नहीं होने चाहिए ना, हो रहे हैं ना। इसका मतलब नहीं है ये सब रॉन्ग है, नॉट एट ऑल, वो सब एक साइंस है, लेकिन वो साइंस की इतनी लिमिटेशन है, बाकी पावर यहां है, बाकी पावर यहां है। सो ये पावर्स हैं, ये एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है और वो हाईएस्ट एनर्जी है। और जब आपने अपनी हायर एनर्जी को ले लिया और हाईएस्ट एनर्जी के साथ जुड़ गए, तो फिर इस सब को तो हम क्रॉस कर ही लेते हैं, राइट? तो जो भी हम बाहर ठीक करते हैं, चाहे वो वास्तु है, कोई अपना नाम चेंज करता है, कोई अपना कलर ये वाला पहनना है, दैट इज वन स्टेप, वो एक स्टेप है चीजों को ठीक करने का। लेकिन रिश्ते, प्रोफेशन एक स्टेप पर नहीं खत्म होते, वो तो एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। हमने पहले स्टेप का सारा ध्यान रख लिया, उसके आगे के स्टेप कहां से होते हैं? मन की स्थिति से। अब बाय चांस किसी रीजन से आपका फर्स्ट स्टेप ठीक नहीं भी है, अब आपने इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया, उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, सब रेडी हो गया, बन गया, कोई प्यार से आता और कहता है, पता है क्या, ये कमरे का वास्तु ठीक नहीं है, अब यहां ना मुश्किल होगी, कान बंद कर लेना। वो राइट बोल रहे हैं, हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, वी आर टॉकिंग अबाउट आर वी गोइंग टू ब्रेक डाउन द हॉस्पिटल एंड मेक इट अगेन? नो। बट डज दैट मीन आई एम गोइंग टू बिलीव कि यहां चीजें ठीक नहीं होंगी? नो नो। इसीलिए इंफॉर्मेशन कम लेनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन लेनी थी तो बनाने से पहले ले लेना, बनने के बाद इंफॉर्मेशन अगर ले ली तो बाकी डेस्टिनी के जिम्मेवार आप हैं, कमरे का डायरेक्शन नहीं, कमरे का डायरेक्शन नहीं। क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना, उसके बाद हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है, थोड़ी सी बात आएगी ना, कहेंगे हाँ उन्होंने बोला ही था, वास्तु ठीक नहीं है, नहीं होने वाला है यहां, एंड वेरी सून दैट स्टार्ट्स बिकमिंग आवर अफर्मेशन, यहां ठीक नहीं हो सकता है, हमें कुछ करना चाहिए, ये नहीं होगा, ऐसे ही 2 साल बीत गए, कुछ हो तो रहा नहीं है, बोलते जाइए और क्या करते जाइए, क्या करते जाइए, बोलते जाएंगे, सोचते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, संकल्प से सिद्धि होनी ही होनी है। कमरे की एनर्जी का असर मन की एनर्जी पर पड़ता है, ठीक है? लेकिन अगर मन की एनर्जी पर भगवान की एनर्जी का असर डाल दिया, तो फिर उसके बाद तो इसलिए अगर ये सारी चीजें पूछनी है तो सब कुछ पहले पूछना, लेकिन बनने के बाद अगर कोई अपनी एडवाइस दे गया तो उसको प्यार से शुक्रिया बोलना और उसको भी बोल देना, बोलो सब कुछ ना बहुत अच्छा चल रहा है यहां पर। उससे क्या होगा, सामने वाला भी अपनी व्यर्थ थॉट को थोड़ा चेंज कर लेगा। डू नॉट लेट एनर्जी कम फ्रॉम देयर टू योर इमीडिएटली ओवर पावर एंड हिट योर एनर्जी देयर। बोलो नहीं, हमारा तो इतना बढ़िया चल रहा है क्या, भले न भी चल रहा हो, झूठ बोलना, झूठी तो बोल रहे हम 3 दिन से, जो हम नहीं है वही तो बोल रहे हैं, क्योंकि बोल बोल के हम वो बन जाने वाले हैं। डू नॉट अलाउ पीपल ऑल्सो टू क्रिएट वेस्ट थॉट्स। उसको बोलो नहीं सब बहुत बढ़िया चल रहा है, तो पता क्या होगा, वो भी आपके लिए वो थॉट क्रिएट करेगा, अरे इनका तो सब बढ़िया चल रहा है। पीपल आर कंसर्न्ड फॉर अस, दे आर आर फैमिली, दे आर आर फ्रेंड्स, वो कोई ये थोड़ी है, लेकिन उनको हमारे लिए डर लगता है, हमारे लिए चिंता होती है, तो वो कहते हैं अरे इनका कैसे चलेगा, इनका कमरा ठीक नहीं, तो उनको हमें थॉट्स को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। हम कहते हैं हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर सब लोग बोलेंगे इनका बहुत अच्छा चल रहा है, इनका बहुत अच्छा चल रहा है, इतनी सारी दुआएं आएंगी कि वो कहां का कहां चला जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर एनर्जीज, बट द हायर एनर्जी इज हियर एंड द हाइएस्ट एनर्जी इज देयर। कभी भी जीवन में नहीं बोलना मुझे किसी की नजर लगी है, ये भी वोकैबुलरी आजकल, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ मेरे को किसी की नजर लगी है, मेरे काम को किसी की नजर लगी है, मेरे परिवार को किसी की नजर लगी है, मेरे घर को किसी की नजर लगी है। बोलते जाएंगे सोचते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, पावर इज हियर। आप ये बोलो मुझ पर भगवान की नजर लगी है, मुझको इतनी सारी आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, तो अगर 5-10 की जेलेसी मिल भी गई तो वो उसके सामने है क्या चीज, है क्या? सपोज ठीक है, इतने हम कलयुग में रह रहे हैं, किसी ना किसी को हमसे जेलेसी होगी, कोई ना कोई हमसे इनसिक्योर होगा, कितने होंगे? 2, 5, 10 और कितने होंगे? तो अगर मुझे 5 लोगों से नेगेटिव मिल भी रहा है, लेकिन मुझे 5,000 से प्योर एनर्जी मिल रही है और मुझे उधर से प्योरेस्ट एनर्जी मिल रही है, तो ये 5 की एनर्जी करेगी क्या? कुछ कर ही नहीं सकती है। लेकिन वो इसलिए असर करती है क्योंकि हमारी अटेंशन वहां नहीं है, हमारी इंटेंशन ब्लेसिंग्स पर नहीं है, हमारी फ्रीक्वेंसी यहां कनेक्ट हो गई है कि आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो दरवाजा वो वाला खुला रखा हुआ है। तो अगर किसी को लगे कभी कि वो किसी की नजर लगी, तो बोलो नहीं, मेरे चारों तरफ परमात्मा का शक्तियों का सुरक्षा कवच है, मुझ पर प्रभु की नजर है और किसी की नजर लग नहीं सकती। और अगर आपको लगे कि कोई आपसे जेलिस है, कुछ इनसेक्योर है, तो रोज बैठकर उसको एक संकल्प में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते जाओ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते जाओ, क्योंकि वो इमोशनली नॉट वेल है, इसलिए जेलिस है, जेलिस है। कई बार हम सोचते हैं, अरे वो तो मेरे से सीनियर है, उन्होंने तो इतना अचीव कर लिया है, फिर वो मुझसे क्यों जेलिस है? भाई, जेलेसी हैज नथिंग टू डू विद रोल, जेलेसी हैज ऑल टू डू विद द सोल। आत्मा की शक्ति घटी होती है तो इनसिक्योरिटी होती है, जेलेसी होती है, तो हमें क्या करना है, क्या देना है उनको, हमें उनको क्या देना है? जरूर उनको दुआएं देना। अगर हर रोज आप 1 सेकंड रुक कर भी मॉर्निंग की मेडिटेशन के बाद उनको ब्लेसिंग्स दे दें, तो आप 2 चीजें कर रहे हैं। एक, अपने को प्रोटेक्ट, कि वहां से एक नेगेटिव आ रही है, यहां से प्योरेस्ट जा रही है। वो टीवी पर जब आता था ना महाभारत और रामायण, आधा आधा घंटा एपिसोड यही बीत जाता था, इधर 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 इधर, हम देखते रहते थे, भाई आगे बढ़ो कहानी नहीं। वो सो दैट इज एक्चुअली टीचिंग वे ऑफ लाइफ, कि यहां से एक शस्त्र आएगा, तो सामने वाला क्या करता था, वो देखता था कि यहां से कौन सा शस्त्र आया है और उसने फिर अपने यहां से उससे पावरफुल शस्त्र निकालकर बीच में, दैट्स ऑल, यही करना है। लेकिन अगर वो सामने वाला ऐसे बैठ जाता कि ओ ये आ रहा है मेरे पास, तो फिर तो वो आएगा ही आएगा। दैट इज व्हाट वी डू, उनको मुझसे प्रॉब्लम है, उसको मुझसे जेलेसी है, तो कोई बात नहीं ना, मेरे पास इतने सारी ब्लेसिंग्स का स्टॉक है। तो जैसे हम वो भेजेंगे, सबसे पहले हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगी, वो हमारी तरफ नहीं आएगा, और दूसरी उनकी हीलिंग हो जाएगी। हम रोज उनको भेजेंगे। एक हीलर के लिए ये याद रखना कि सामने वाला बीमार है, मुझे उनको हील करना है, ये आपके लिए इजीएस्ट है, क्योंकि वो आपका संस्कार है। जो आप फिजिकल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, आपने इमोशनल हेल्थ के लिए करना है। एक बार दिल्ली में एक नर्सेस का प्रोग्राम था, ऐसे इतना हॉल था, अबाउट 1,000 नर्सेस थे। तो उनसे पूछा, आपके स्ट्रेस का क्या कारण है? सो वी थॉट दे विल से नाइट ड्यूटी एंड ऑल दिस। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर गुस्सा करते। मैं कहा, ये कैसे स्ट्रेस है, इतनी सारी चीजें छोड़ के ये वाली बात बोली है? तो मैंने कहा, पेशेंट भी तो गुस्सा करते हैं ना, वो तो कितना कभी कोई फेंक देता है खाने की प्लेट, कभी कुछ कर देता है, कभी वो हटा देते हैं वो सब। कहते नहीं, उसका कोई बात नहीं है, वो बीमार है। कंपैशन नेचुरल, नेचुरल संस्कार है। जैसे ही मेरी ट्यूनिंग हो जाती है, वो बीमार है, मैं उनके बिहेवियर से कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, मुझे बुरा नहीं लगता है। तो वी शेयर्ड विद देम, वी सेड, जो गुस्सा कर रहा है वो भी बीमार है। कहते, वो कैसे बीमार है, वो तो सुबह सुबह आके ओटी में गुस्सा करने लग जाते हैं। मैंने कहा, जो हैप्पी नहीं है वो बीमार है, तो वो गुस्सा जो कर रहा है ना, वो भी बीमार है। आप कल ऐसे थॉट क्रिएट करना उनके लिए कि वो भी बीमार है। तो नेक्स्ट डे एक बहन ने फोन किया, कहती है, तो बहुत ईजी है, कहती आज उन्होंने वैसे ही गुस्सा किया, रोज ही करते हैं वो आकर, सुबह सुबह स्टार्ट करने से पहले सर्जरी वो डांट ही देते हैं किसी ना किसी बात के ऊपर। लेकिन मैंने इमीडिएटली आज थॉट क्रिएट की, ओ डॉक्टर साहब आज बीमार है। मैं कहा, फिर क्या हो गया? कहते, जैसे ये थॉट क्रिएट की, मुझे बुरा नहीं लगा उनका गुस्सा, और फिर मेरे अंदर सेकेंड थॉट आई, आई शुड बी नाइस टू देम सो दैट दे विल ऑल्सो गेट हील्ड। दिस संस्कार इज इनेट इन ईच वन ऑफ यू। आपके पास ये संस्कार इनेट है, आपको सिर्फ उसको फिजिकल के साथ साथ इमोशनल लेवल पर भी ले आना है। जो हमारे लिए गलत सोचता है, बोलता है, व्यवहार करता है, वो मन से, नॉट मेंटल हेल्थ से, इमोशनल बीमार है। और हमें क्या करना है, एक थॉट की ब्लेसिंग देकर उसको भी हील करना है और अपने आप को उसकी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है. सो व्हाट दे आर सेंडिंग टू मी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई एम सेंडिंग टू देम इज माय प्रायोरिटी. वहां से कुछ भी आ रहा हो, जैसे जैसे ये कलयुग और अपने घोर कलयुग की तरफ जाएगा, तो डोंट एक्सपेक्ट द प्योरेस्ट ऑफ एनर्जी टू कम फ्रॉम पीपल. नॉट बिकॉज वो जानबूझ के कुछ कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इमोशनली अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं. तो जो नहीं करेगा, स्ट्रेंथन नहीं करेगा, वो नेचुरली छोटी छोटी बातों में हर्ट होगा, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करेगा, छोटी छोटी बातों को लंबा पकड़ के रखेंगे लोग. जब हम बड़े बड़े परिवारों में रहते थे, हमारी पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट बहुत हाई होती थी, राइट? तो हम क्या करते थे, कुछ बात भी हो जाती थी तो कितनी जल्दी खत्म करते थे उसको, कितनी जल्दी खत्म करते थे, फट फट, क्योंकि पता है उन्हीं के साथ रहना है, अभी इकट्ठे हो गई बात खत्म. तो जब हम वो करते थे, हमारी टॉलरेंस पावर कैसी होती थी, हायर. अब लोग बहुत छोटे 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 परिवार में होते 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 सिंगल कमरे में आ गए. अब हम उस दुनिया में आ गए हैं जहां हर एक के पास अपना कमरा है मेजोरिटी घरों में, और अपने कमरे में बैठ के अनजान लोगों से दोस्ती करके बैठे हुए हैं. तो वहां से तो कोई रिएक्शंस आने नहीं है, सब मीठा मीठा ही बात कर रहे हैं ऑनलाइन. तो हर एक कहता है आजकल, एक मुझे अपना डॉग चाहिए, दूसरा मुझे अपना लैपटॉप चाहिए, और फोन है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी से रिएक्शन नहीं आता ना कुछ भी. तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस, बट दैट्स नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि उनकी टॉलरेंस पावर, उनकी पावर टू एडजस्ट ये. और इसीलिए आप देखेंगे इमोशनल स्ट्रेंथ भी इन मेजोरिटी केसेस, जितना आप छोटी फैमिलीज के अंदर जाते जाएंगे, उतने बड़े शहरों में सिंगल सिंगल जितने लोग रह रहे हैं, यू विल फाइंड इमोशनल हेल्थ लेसर इन मेजोरिटी केसेस. जो आज भी बड़े बड़े परिवारों में रह रहे हैं, जिनको बार बार में एडजस्ट करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तो उनकी इमोशनल हेल्थ बेटर है, लेस रिएक्टिव. वो आपको कहेंगे, हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप लेट हो गए एक घंटा, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड. और जो थोड़ा ऐसे आएंगे, आप पांच मिनट लेट हुए कैसे, आई एम वेटिंग हियर सिंस 5 मिनट्स फॉर यू, आपने मुझे 8:30 का टाइम दिया था. सो दिस इज गोइंग टू हैपन, वी कांट चेंज देम, लेकिन वी कैन रेडिएट ब्लेसिंग्स. क्योंकि मुझे किसके कर्म पर ध्यान रखना है, मुझे किसके कर्म पर ध्यान रखना है, क्योंकि उनका कर्म मेरा भाग्य नहीं बनाता है. ये बोलिए एक बार. और उनका मतलब कोई भी, सिर्फ पेशेंट नहीं, आपके स्पाउस का कर्म भी आपका भाग्य नहीं बनाता. किसी और आत्मा का कर्म मेरा भाग्य नहीं बनाता. तो किसी की तरफ देख के ब्लेम नहीं करना, तुम्हारी वजह से मेरी डेस्टिनी ऐसी हो गई. सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है. तो सारी दुनिया भी गलत कर्म कर रही हो ना, अगर मेरा कर्म राइट हो तो मेरा भाग्य ब्यूटिफुल है. बिकॉज द लॉ इज वेरी सिंपल, माई कर्म क्रिएट्स माई डेस्टिनी. सो फॉर पीपल्स रॉन्ग कर्म, डोंट इंटेंगल एंड क्रिएट अ मिस्टेक इन योर कर्म. वो बहुत भारी वापस आता है, नहीं तो बहुत भारी आता है. तो सारा दिन ध्यान रखना, अपना हाथ ऐसे पकड़े एक बार. नाउ यू आर गोइंग टू थ्रो योर कर्म बॉल आउटसाइड. ये सामने वाली दीवार पे फेंकना है अपने, बड़े ध्यान से फेंकना. एक बार वो हाथ से निकला, योर कर्म इज आउट. उसके बाद यू कांट चेंज इट. इसी तरह हर अटेंशन से कर्म करना चाहिए. अब आपको किस स्पीड पर फेंकना है, किस एंगल पर फेंकना है, आप सब कुछ सोच लो और अब उस बॉल को फेंक दो. फेंकिए, बिना सोचे समझे नहीं फेंकना. इसलिए बचपन से सीखा था, बिना सोचे समझे नहीं करना. अब आपने फेंक दिया, ठीक है, नाउ इट्स लॉ ऑफ एनर्जी कि जो आपने फेंका है वो क्या होने वाला है, वो वहां हिट करने वाला है और वापस आने वाला है. वापस आने की स्पीड और डायरेक्शन किसने डिसाइड की, एंड दैट इज वाई इट इज सेड एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड. Predestined means previously decided. By who? तो हमने जब सुना predestined तो हमने सोचा वो भाग्य वो लिख रहा है. No, it was predestined by me. तो मेरी पावर कब है, फेंकने के टाइम, जब वो आ रहा है. मेरी वो आने वाली बॉल पे कोई पावर नहीं है. इसीलिए सिचुएशंस के बारे में सोचना, ये ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ना होता, ये इनको ऐसा करना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी. यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ द रिटर्न बॉल शुड हैव कम. इज इट इन आर कंट्रोल नाउ, इज इट इन आर कंट्रोल नाउ? नो. When was it in our control? तो अब मेरे कंट्रोल में क्या है फिर? आप एक मिनट खड़े होंगे? हाँ, शी इज माई रिटर्न बॉल राइट नाउ. ओके, ओह फॉरगेट, आई विल बिकम हर रिटर्न बॉल. परसों भी हमने देखा था, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक आई एम गोइंग टू बी वेरी रूड टू हर. ठीक है, वेरी मतलब वेरी. अब लुक एट इट, जब मैं इनके साथ रूड हो रही हूं, उनके लिए बॉल कौन से डायरेक्शन में है? अब अपने आप को उधर रखो, इसको फिट कर लेना है. जब मैं इनके साथ रूड हो रही हूं, उनके लिए बॉल कौन से डायरेक्शन में आ रही है? उनकी तरफ आ रही है. अब आंसर सारे आप देंगे. ये बॉल उनकी तरफ आ रही है, तो उनका माइंड फर्स्ट क्वेश्चन ये करता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर बताइए. हाँ जी, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, उतना ज्यादा भी नहीं सोचो, सिर्फ सिंपल थॉट, मेरा कर्म वापस आ रहा है. क्लियर हो गया? 1000 थॉट्स खत्म हो जाती हैं और वन थॉट पे आ जाते हैं. क्यों किया, कैसे बोला, ऐसे क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, बोलना था तो अकेले बोलते, बोलना था तो प्यार से बोलते, धीरे बोलते, कम बोलते. वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी. यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ द रिटर्न बॉल शुड बी. एनीथिंग इन आर कंट्रोल देयर? नो. तो बिल्कुल एनर्जी को वेस्ट नहीं करना कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. बॉल वापस आ रही है, आप आती हुई बॉल को चेंज नहीं कर सकते. अब ये मेरे पास क्यों आ रही है, ये बोल रही है, क्योंकि ये मेरा कर्म मेरे पास आ रहा है. ये कर्म इनके कंट्रोल में अब नहीं, मतलब ये बॉल जो इनके पास जा रही है, ये इनके कंट्रोल में नहीं है. अब ये जैसा सोचेंगे और ये जो अब बोलेंगे और ये अब जैसा व्यवहार करेंगे, क्या वो इनके कंट्रोल में है? ये हमारी गलती थी. थर्सडे से पहले हम कह रहे थे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ देम. सो यू सी, वी हैड गिवन अप आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट कर्मा, एंड इसीलिए कर्मा जस्ट वेंट स्पाइरल डाउनवर्ड्स. क्योंकि परसों ये क्या कह रही थी, इन्होंने ऐसा किया तो मुझे बुरा तो लगना ही था. अब ये ऐसा नहीं कहेंगे, अब ये क्या कहेंगे, ये जो मेरे पास आ रहा है, ये मेरा रिटर्न कर्मा है. अब मुझे जो फील करना है वो क्या है, वो क्या है, वो मेरा प्रेजेंट कर्मा है. फिर से बॉल उठाइए, मेरी तरफ फेंकिए. ठीक है, ये आपका पास्ट कर्मा है. ये बॉल आपने कब फेंकी थी वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये आपका पास्ट कर्मा है. मैं आपके साथ अभी जैसा बिहेव करूंगी, ये आपका पास्ट कर्मा का रिटर्न है. अब आप कैसा फील करेंगे, वो आपका प्रेजेंट कर्मा है. और अब जो आप प्रेजेंट कर्मा फेंकेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, फ्यूचर डेस्टिनी. इस इक्वेशन को हमेशा यहां बुद्धि में रखना है. लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल. इसको कहते हैं त्रिकाल दर्शी होना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हुए चलना, कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरे पास्ट कर्म का कॉन्सिक्वेंस है. नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा ये शब्दों को हटा देते हैं. इट इज जस्ट माई रिटर्न बॉल, डोंट लेबल इट एनीथिंग नेगेटिव. लेबल लगाते ही थॉट्स चेंज हो जाती हैं. इट इज जस्ट माई रिटर्न बॉल. तो जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, इट इज द रिटर्न ऑफ माई पास्ट कर्मा. अब हाउ आई थिंक फील बिहेव इज माई प्रेजेंट कर्मा, एंड माई प्रेजेंट कर्मा विल डिसाइड माई फ्यूचर डेस्टिनी. तो हर क्षण पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं. एवरी क्षण पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर साथ साथ चल रहा है. पास्ट आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है. क्लियर हो गया ये? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? जी प्लीज रिपीट. पास्ट जो मैंने पहले फेंका था वो मेरे पास आ रहा है, whether it is health of my body, whether it is somebody not behaving right with me. This I am talking about the negative. बाकी तो positive तो सारे ही past आ रहे हैं. आप यहाँ आए हो, ये आपका return of past karma है. आपकी body बिल्कुल healthy and fit है, ये आपका past karma है. आप एक पीछे एक बहुत अच्छी happy family छोड़ के आए हो, ये आपका past karma है. इस जन्म में आप एक doctor हैं, ये आपके past कर्मों का फल है कि आप ऐसे profession में हैं जहाँ आप सबको सुख देते हैं. Right? So all this is return of past karma. So every situation is return of past karma. How I respond? Present karma. And as will be the present, so will be the... So past coming, present getting created, future getting decided. Hamara focus kis pe hona chahiye? Haan ji? Wo abhi dekhenge. Easy? Past, present, future. तीनों में से power किस पर है? Present. हम ज्यादातर past और future में रहते हैं, इसीलिए present में गलती हो जाती है. ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. इसीलिए meditation एक हमें power देता है. व्यर्थ thoughts जब खत्म होने लगते हैं, waste thoughts, past के बारे में जो learn करना था सीख लिया, present के बारे में तो ज्यादा planning नहीं चाहते हैं. ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एफर्ट करते जाओ. एफर्ट मतलब मेहनत, कर्म करते जाओ. बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. जिसका आज प्रेजेंट अच्छा होगा उसका फ्यूचर तो सरेंडर करो. सरेंडर करो कि परमात्मा मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूं, आप मुझे यूज करते जाओ. मैंने क्या प्लान करना है अपनी लाइफ को? मैंने क्या प्लान करना है अपनी लाइफ को? मैंने प्लान करना है तो इतना ही प्लान करना है. आप मुझे यूज करो तो कहां का कहां मैं पहुंचाने वाला हूं. आप मुझे वहां यूज करो कि जहां जरूरत है. मैं प्लान करूंगा तो कहीं और पहुंच जाऊंगा. तो रोज परमात्मा को सुबह एक लाइन करो, बोलो आई एम अवेलेबल, प्लीज यूज मी. आई एम अवेलेबल. आप अवेलेबल है ना, बिजी तो है नहीं. परमात्मा हमें कहते हैं, जो रोज सुबह हम मुरली क्लास सुनते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मैं बैठा हूं, मुझे यूज करो. क्योंकि हम भगवान को भी यूज नहीं करते, हम खुद ही करते रहते हैं हर चीज. तो परमात्मा कहते हैं मैं बैठा हूं, मुझे यूज करो. तो हम भी उसको कहते हैं हम भी बैठे हैं, आप भी यूज करो. आप हमें यूज करो, हम आपको यूज करते हैं. जीवन बड़ी ब्यूटिफुल हो जाती है, बहुत ब्यूटिफुल हो जाती है. आप हमें यूज करो, हम आपको यूज करेंगे. वेरी सिंपल. वो अगले साल हम ये करेंगे, पांच साल के बाद हम ये करेंगे, दस साल के बाद. अरे दुनिया तो छह महीने में चेंज हो रही है. अभी अच्छे कर्म, एलिवेटेड कर्म, मेडिटेशन, हाईएस्ट वाइब्रेशन, फिर तो आपकी डेस्टिनी वहां पहुंचेगी जो आपने सोचा नहीं था कि वहां पहुंच जाएंगे. बीज अच्छा बोना चाहिए, फिर बीज को रोज पानी डालना चाहिए, फल तो अपने आप निकलेगा ना. फल की क्या प्लानिंग करनी है? फल प्लान करने से थोड़ी निकलता है. फल प्लान करने से निकलता है नहीं, फल राइट बीज डालकर उसको मेहनत के साथ नरिश करने में निकलता है, सोचने से नहीं निकलता है. तो सरेंडर की जीवन जियो, बहुत लाइट रहेंगे, बोझ नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं होगी. ऐसा ही होना चाहिए पांच साल बाद, हो सकता है कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो जाए एंड एक्चुअली वो मेरे लिए बेटर हो, बट इट्स नॉट व्हाट आई हैड प्लान्ड. So, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी रिजेक्शन में जाते हैं क्योंकि जो उन्होंने प्लान किया था वो नहीं हुआ, इवन इफ जो हुआ वो एक्चुअली बहुत अच्छा था. क्योंकि हम सिर्फ प्लान बनाते नहीं, हम प्लान से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और पूरा परिवार भी उस प्लान से अटैच्ड हो जाता है. क्योंकि जब वो बच्चा गर्भ में था तभी आपने डिसाइड कर लिया था इसको भी डॉक्टर बनाना है ना, यही तो है बात. आपने तभी डिसाइड कर लिया था, आप तभी से अपना हॉस्पिटल बना रहे थे, कहते थे मेरे बाद वो संभालेगा इसको. तो आप तो डेस्टिनी पहले से ही सोच रहे थे उसकी. सो आवर अटैचमेंट इज वेरी डीप. वो हमारा बच्चा नहीं है, वो कौन है? सोल ऑन अ जर्नी. नहीं, परमात्मा का बच्चा नहीं, सोल ऑन अ जर्नी. परमात्मा के तो हम सारे बच्चे हैं. सोल ऑन अ जर्नी, जो अपने साथ अपने कर्म और भाग्य लेकर आया है. आप अपनी मेहनत उसके साथ करिए, वो भी अपनी मेहनत करे, लेकिन उसकी डेस्टिनी में अगर कुछ और मैजिकल लिखा है तो लेट दैट अनफोल्ड, लेट दैट हैपन. क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो अटैचमेंट नहीं करनी है, मेहनत करनी है. अटैचमेंट डिप्लीट करेगी। तो अब हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं, पावर कहां है? और इसीलिए हम परसों से देख रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू, रिस्पॉन्ड राइट। सो यू सी व्हाट वी वर फोकसिंग ऑन? वी वर फोकसिंग ऑन सेंड द न्यू बॉल राइट। डोंट से आने वाली बॉल का कलर अच्छा नहीं है तो मैंने वही वाला फेंकना है फिर से। नहीं, मैंने कौन से कलर का बॉल फेंकना है हमेशा? प्योरेस्ट, प्योरेस्ट, चाहे सामने से कोई भी कलर का आ रहा हो, व्हिचएवर एनर्जी, कैसी भी बात हो रही हो, वो मेरा पास्ट कर्म का परिणाम है। अब अगर ये बहन मुझे देखती है और कहती है ये मेरा पास्ट कर्म का परिणाम है, फिर वो अपने आप को कहती है मैं तो मिली इनको पहली बार रही हूं, ये मेरा पास्ट कर्म का परिणाम कहां से आ गया? मैं तो इनको जानती नहीं पहले, मैं तो मिली पहली बार रही हूं, और जब से मैं दो दिन से इनको जानती हूं, मैंने तो इनके लिए कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फिर ये मेरे पास्ट कर्म का परिणाम कैसे हो सकता है? तो जब हम कहते हैं ये मेरे पास्ट कर्म का परिणाम है, तो मैं कौन है? मैं कौन है? ये शरीर के कर्म का परिणाम नहीं है, ये मुझ आत्मा के कर्म का परिणाम है। तो इस आत्मा ने मुझे एक बॉल फेंकी, 10-20 साल बीत गए, मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, हो सकता है उन्होंने भी कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, और फिर हम मिलेंगे तो बॉल वापस जाएगी, क्योंकि बॉल तो जो खेल चल रहा है बॉल का, वो सोल और सोल के बीच चल रहा है, बॉडी और बॉडी के बीच नहीं, रिश्ते और रिश्ते के बीच नहीं, रोल एंड रोल के बीच नहीं, जो खेल चल रहा है वो किसके बीच चल रहा है? सोल एंड सोल के बीच चल रहा है। तो मैं आत्मा किसी के साथ कुछ बहुत गलत कर देती हूं, सपोज मैंने और इन्होंने बिजनेस किया, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छा चला, फिर मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने इनके साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, जिससे मैं तो बहुत रिच हो गई, मेरा परिवार भी बहुत हैप्पी था, सब कुछ परफेक्ट था मेरी लाइफ में, दुनिया मुझे देख रही थी और कहती वाह इन्होंने इतना गलत किया फिर भी इनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये लॉ ऑफ कर्म कैसे चलता है? ये हम कहते हैं ना कई बार ऐसा, इन्होंने गलत किया इनके साथ अच्छा हो रहा है, ये इतना अच्छा करते हैं इनके साथ क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हम एक कॉस्ट्यूम के अंदर की लाइफ टाइम चेक कर रहे हैं सिर्फ। अब मैंने इनके साथ गलत किया, इनका धन भी गया, इनके मन की खुशी भी गई, इनके शरीर के हेल्थ पर असर हो गया उस बात का, इनका परिवार बिखर गया, सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मेरे कर्म की वजह से। और मैं आत्मा मौज के जीवन जी के 100 साल की आयु में आराम से मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, थोड़े सालों बाद उन्होंने भी शरीर छोड़ा, फिर हम कभी ना कभी किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में फिर से मिलेंगे, और जब हम मिलेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सोचो सोचो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, अगली बार उधर का उधर फिनिश करो। अगर आप सब कुछ उधर का उधर फिनिश करेंगे ना, तो सब कुछ जो इतना आज अच्छा मिला हुआ है वो भी नहीं मिलेगा, ये अच्छा भी सारा पूर्व अच्छे कर्मों का फल मिला हुआ है, इतने अच्छे परिवार में जन्म मिला, इतने अच्छे संस्कार मिले, इतनी अच्छी पढ़ाई मिली, इतनी अच्छी परवरिश मिली, पैदा होते हुए ही आपको मिलनी शुरू हुई, कैसे मिली? कैसे मिली? पूर्व कर्म किए थे ना, वो कंटिन्यूड है। तो इसलिए खेल आत्मा और आत्मा के बीच है। अब क्योंकि मैंने इतना भारी कर्म किया था कि धन का भी नुकसान हुआ, मन का भी नुकसान हुआ, तन का भी नुकसान हुआ, तो इन्हों को मुझे रिटर्न देने के लिए थोड़ा नजदीक ही आना पड़ेगा ना, मेरे पड़ोसी बनके तो होगा नहीं चुप, तो ये मेरे इर्द गिर्द कौन से रिश्ते में आ सकते हैं? कौन से रिश्ते में आ सकते हैं? कौन सा नाम लिया? आपकी वाइफ साथ में नहीं आई आपके आज? ये तो बड़ा गलत कर्म क्रिएट किया, अभी अभी सॉरी बोलो फटाफट उनको, जिसने भी ऐसा सोचा वो सॉरी बोलो अभी तुरंत उनको, है ना? परमात्मा कहते हैं मजाक में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आजकल ना बहुत सारे मीडिया पे ऐसे मजाक सर्कुलेट होते रहते हैं, हम रिलेशनशिप्स का मजाक उड़ाते हैं, हम किसी कास्ट का मजाक उड़ाते हैं, इस इज ऑल कर्म, ये सारा कर्म बन जाता है हमारा, क्योंकि हम मजाक में बोले या सीरियसली बोले, हमने बोल दिया, और जैसे ही बोल दिया तो वो एरो क्या हो गया, निकल गया। महाभारत में दिखाते हैं कि जब पांच पांडव द्रौपदी को लेकर आए तो उनकी मदर की बैक थी उनके तरफ, तो मदर ने क्या किया, क्या कहा, पांच लो, और फिर मुड़ के देखा तो कहती अच्छा अच्छा नहीं नहीं ये नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा एक बार बोल दिया, अब इसको चेंज नहीं किया। ये सब हमें सिखाने के लिए होता है कि ध्यान से बोलना, ध्यान से सोचना, क्योंकि जैसे ही आपने कर दिया आपका कर्मा बॉल तो निकल गया, तो अंडू करो, सॉरी करो फटाफट, जिसने भी ऐसा सोचा। हाँ, बहुत सॉरी बोलो, बहुत बहुत सॉरी बोलो, आप तो बहुत अच्छे हो, आपसे ज्यादा अच्छा पार्टनर तो मुझे, मेरे पूर्व अच्छे कर्मों का फल है जो आप मेरे जीवन में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कई बार गुस्से में देखकर उनको बोल देते पता नहीं मैंने क्या कर्म किए थे, बहुत अच्छे कर्म किए थे। एनीवेज या द स्टोरी इज कि उनको बहुत नजदीक आना पड़ेगा, और इसलिए जब हम अपने नजदीक संबंधों में कुछ बड़ी बड़ी बातें देखते हैं, कोई भाई और बहन कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, कोई हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, कोई बच्चा बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स को तंग कर रहा है इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो हम कहते हैं मेरे साथ इस रिश्ते में ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद रखना है वो रिश्ता नहीं, वो एक सोल टू सोल कनेक्शन है, और वो आत्मा उस कार्मिक अकाउंट के साथ मेरे जीवन में आई है, गलती उधर नहीं, ये मेरा पास्ट कर्म का रिटर्न है, लेकिन पावर अभी मेरे पास है कि मुझे अभी इस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है, क्या करना है, अब इसको और मत इंटेंगल होने देना कार्मिक अकाउंट को। विच मीन्स इफ आई थ्रो अ ब्लैक कलर बॉल, अ ब्लैक कलर बॉल विल कम बैक। अब अगर मेरे पास 500 भी ब्लैक कलर बॉल्स आ रही हैं, मुझे यहां से कौन से कलर की फेंकनी चाहिए, व्हाइट। अगर मैंने फिर से ब्लैक फेंक दी तो मेरा वो कार्मिक अकाउंट क्या होता जाएगा, और फिर हम फिर मिलेंगे, और फिर हम फिर मिलेंगे, और हर बार वो कार्मिक अकाउंट और एंटैंगल्ड होता है। इसीलिए जब हम आजकल देखते हैं डे बाय डे कार्मिक अकाउंट्स बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, बिकॉज पहली बारी में उनको सेटल नहीं किया, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो जीवन में कभी किसी से नहीं डरना, सिर्फ एक चीज से डरना, गलत कर्म। बाकी तो दुनिया में कोई आपके भाग्य को अफेक्ट नहीं कर सकता, भगवान कहता है मैं भी आपका भाग्य नहीं लिखता, अपना भाग्य आप खुद लिखते हैं, कर्म आपकी कलम है, हमारा कर्म वो पेन है जिससे हम लिखते हैं, बस वो ध्यान से लिखो, उसके बाद वी नेवर हैव टू वरी और फियर एनीथिंग एट ऑल। परमात्मा से भी कभी डरना नहीं चाहिए, हम भगवान से डरते हैं, भगवान से डरना थोड़ी होता है, लेकिन डरते इसलिए उससे क्योंकि हमें लगा वो हमारा भाग्य लिखता है, नाराज ना हो जाए, तो पहले हम उसको ब्लेम करते हैं गलत भाग्य लिखने की, फिर हम कहते हैं वो नाराज भी हो जाता है, फिर हम कहते हैं, तो अज्ञानवश हम बहुत कुछ कहते हैं उसके लिए। तो कर्म पर अटेंशन। तो अगर किसी के साथ भी कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट दिख रहा है, कहीं कोई इंटेंगल हो रहा है, कहीं किसी के साथ कोई बात पकड़ के रखी हुई है, उसको रिलीज करो, फॉरगिव करो, ब्लेस करो, फिनिश करो, रिलीज करो, फॉरगिव करो, फिनिश करो, भले गलती सामने वाले की कितनी 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 भी बड़ी दिखाई दे, फॉरगिव करना सिर्फ एक थॉट होती है, वहां से 1 मिलियन बॉल्स भी आ रही हो, फॉरगिवनेस की व्हाइट बॉल सिर्फ एक व्हाइट वन थॉट होती है। ये नहीं कहना मैं कैसे फॉरगिव करूं, कुछ भी नहीं है, रोज बोल रहे आई फॉरगिव हो जाएगा, आई रिलीज, आई लेट गो, इट्स ओवर, इट्स पास्ट, नाउ इट्स अ न्यू कार्मिक अकाउंट फुल ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। रोज बोलो, रोज बोलो, रोज बोलो। अभी मन से हो भी नहीं रहा होगा, मन में बहुत दर्द होगा अभी, लेकिन जस्ट बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, तो आपसे वो व्हाइट बॉल्स क्या होती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, तो जो पास्ट की एनर्जी ब्लॉकेज है वो क्या होता जाएगा, रिलीज होता जाएगा। तो कभी भी किसी के भी प्रति पकड़ के नहीं रखना है कुछ, पता नहीं है कभी वो या मैं शरीर छोड़ देंगे, अभी अभी तो हमें याद है बात क्या है, शरीर छोड़ने के बाद फिर से मिलेंगे तो याद नहीं होगा क्या है और प्रॉब्लम आती जाएगी उस रिश्ते के अंदर. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, आई विल क्रिएट ओनली ब्यूटिफुल थॉट्स. दैट्स द पावर आई हैव. और इसीलिए वो रोज की स्पिरिचुअल स्टडी और वो रोज की मेडिटेशन राइट कर्म करने में बहुत ज्यादा पावर देती है. क्योंकि आज हम भले सारे कर्म राइट कर रहे हैं, लेकिन मेरा कौन सा पास्ट कार्मिक अकाउंट सडनली सामने आके खड़ा हो जाता है और उस पास्ट कार्मिक अकाउंट के सामने मुझे राइट कर्म करने की शक्ति चाहिए. सो इसलिए वो डेली की एनर्जाइजिंग, ताकि सामने वाले की एनर्जी का मुझ पर असर ना हो, मेरी एनर्जी का भी उन पर नहीं, मुझसे परमात्मा की शक्ति जो मैंने रोज भरी थी वो उधर जाएगी. तो फिर वो व्हाइट बॉल का लेवल भी एक अलग हो जाता है, अलग हो जाता है. तो मेडिटेशन में जब आप सेंटर पर जाएंगे और सीखेंगे, मेडिटेशन में हम रोज सीखते हैं कि कैसे परमात्मा से शक्ति लेकर उस आत्मा तक भेजनी है, परमात्मा से शक्ति लेकर उस सिचुएशन को भेजनी है. वाइब्रेशंस क्रिएट मैजिक. सेंटर पर तो हम ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब भी किसी के लाइफ में कुछ इशू आता है, जो लोग सेंटर पर आते हैं, अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई डिजीज आई है, कोई फैमिली में कुछ हुआ, कलेक्टिव मेडिटेशन फॉर देम. सब लोग क्लास में उनके लिए मेडिटेट करते हैं रोज सुबह, और जब कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट होती है तो वो कार्मिक अकाउंट और भी जल्दी सेटल हो जाता है, और भी जल्दी सेटल होता है. दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वहां एक स्टडी चल रही है पिछले 6 सालों से, ब्रेन इंजरी, जो ब्रेन इंजर्ड पेशेंट्स इन हॉस्पिटल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वहां से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, दूर है, नजदीक नहीं है वो जगह, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, और वहां पे एक स्टडी ग्रुप बच्चों का, जो वो सीखते हैं श्लोक और मंत्र, वो हर रोज यहां पे जो ग्रुप है ब्रेन इंजर्ड, उनको 2 में डिवाइड किया गया है. एक वो स्टडी ग्रुप है, तो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस स्टडी ग्रुप के लिए रोज जाप करते हैं, रोज जाप करते हैं, मतलब डिस्टेंस कलेक्टिव हीलिंग वाइब्रेशंस की. वो दूर हैं, उनको जानते नहीं हैं, लेकिन दूर बैठकर भी जो वो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, सो दे आर गेटिंग अ डिस्टिंक्ट डिफरेंट रिजल्ट इन द 2 ग्रुप्स. तो ये हम किसी के लिए भी कर सकते हैं. तो जब हम दूर बैठे कर सकते हैं, तो आप सोचो हॉस्पिटल में आप बैठकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं. That is why just the vibrations of a hospital are also healing energy. इतनी पावर होती है उसके अंदर कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए अटेंशन किस पर? कर्म. एंड ऑल्सो टू रिमेम्बर कि मैं आत्मा कभी भी ये शरीर छोड़ सकती हूं. तो मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ क्या जाएगा? अभी जो चीजें आ रही हैं मेरे पास, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि पिछली बार ठीक नहीं की थी, पिछली बार ठीक नहीं की थी, ठीक करे बिना निकल आए थे वहां से. इस बार क्या करना है? इस बार क्या करना है? क्या करना है इस बार? भाई साहब यहीं बैठ जाइए. इस बार क्या करना है? इरिस्पेक्टिव ऑफ ये नहीं सोचना कि कर लेंगे. कब करना है? क्यों अभी करना है? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कोई पता नहीं है. एंड इट्स नॉट फॉर द फ्यूचर, इट इज माई प्रेजेंट विल बिकम लाइट. मेरी प्रेजेंट क्लीन हो जाएगी. तो मुझे अभी के लिए करना है, आगे के लिए नहीं. आगे तो अपने आप उसका रिजल्ट है ही, वो उसका परिणाम है. तो करेंगे ठीक? कुछ दिख रहा है कौन सा वाला कर्म करना है? किस किस को सिलेक्ट हो गया कि मुझे कौन से वाले कार्मिक अकाउंट को ठीक करना है? एक है ठीक करना है, और दूसरा है जो भी सिचुएशन आई है किसी के पास भी हमारी फैमिली में, हमें उसको हाईएस्ट वाइब्रेशन देके उसको कंप्लीटली चेंज करना है. और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो ठीक नहीं हो सकती है, कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज को ठीक रखना है, वो भी कर्म है, वो भी कर्म है कि हमें अपनी एनर्जी को हाईएस्ट रखना है, तो वो चीज ठीक नहीं हो सकती, लेकिन सफरिंग नहीं होगी। सफरिंग नहीं होना भी डेस्टिनी है, राइट? और कुछ लोगों को कार्मिक अकाउंट बहुत छोटा होता है, कोई ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन सफरिंग ज्यादा होती है, तो वो सफरिंग उनकी डेस्टिनी में आई है। सो इट्स नॉट द सिचुएशन, इट इज हाउ आई फील अबाउट द सिचुएशन। तो कोई हो सकता है थोड़ा सा बीमार है लेकिन सफर बहुत कर रहा है, और कोई हो सकता है बेड रिडन है, उसको भी एक लाइफ ऑफ पर्पस बना रहा है। दिखते हैं ना हमें इतने सारे लोग, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, तो भी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं दुनिया के अंदर, तो भी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो कार्मिक अकाउंट आया हुआ है, ये एक पास्ट कार्मिक अकाउंट है कि मेरा वो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बट उन्होंने उस पास्ट कार्मिक अकाउंट को प्रेजेंट पर इन्फ्लुएंस करने नहीं दिया, और उन्होंने अपने प्रेजेंट कर्म को कहां उठा लिया, इतना ऐसे उठा लिया कि वो दुनिया में ऐसे काम कर रहे हैं जो हम सब नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए द पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट, ऑलवेज इन द प्रेजेंट। वो जो जन्म पत्री पास्ट कर्म की होती है ना, उसको बार बार रेफर नहीं करना चाहिए, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे वही होने वाला है जो हम अब करेंगे, जो हम अब करेंगे। तो राइट कर्म करने के लिए मुझे हर रोज सबसे पहले तो ज्ञान और मेडिटेशन से स्ट्रेंथन करना है अपने आप को। कल आप सबने वापस जाना है, मेजोरिटी ने अटेंशन है, ये सारी बातें भूल जाएंगी या नेक्स्ट संडे तक। दिस इज नॉट नेगेटिव, इट इज जस्ट दैट इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज रंग ऑफ ऑल अदर वाइब्रेशंस विल कम ऑन यू। बट अगर आप जाते ही इसको एवरी मॉर्निंग सस्टेन कर लेंगे, then it becomes your property forever. Then it's your property. It's like कुछ लोग detox center जाते हैं ना physical detox के लिए, वापिस आके airport और station पे कुछ ना कुछ खाने लग जाते हैं। अभी अभी तो detox कराया, अभी क्यों खा रहे हो यही चीज, कहते हैं अभी जाएंगे अगले साल फिर से, तब तक थोड़ी ऐसे ही रहेंगे। तो वो we are not here for that kind of a detox. कि हाँ तीन चार दिन detox हो गया, गुस्सा खत्म हो गया, शांति फील हो रही है, फॉरगिव कर दिया उनको, वापिस गए, नहीं। वी आर हियर फॉर अ परमानेंट क्लेंजिंग, एंड नॉट जस्ट अ क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग, एंड देन नॉट जस्ट एनर्जाइजिंग अस बट ऑल्सो एनर्जाइजिंग अदर्स। तो उसके लिए डेली आप जहां जहां रहते हैं, आपके नजदीक राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, वहां पर बहने हमेशा सेवा पर हैं, जो भी दिन जो भी टाइम आपको सूट करे, आधा घंटा निकालिए चार पांच दिन के लिए, मेडिटेशन के कोर्स को प्रॉपरली कर लीजिए, और फिर हर रोज हर सेंटर के ऊपर परमात्मा के महावाक्य और मेडिटेशन रोज होता है, एवरी मॉर्निंग। हर सेंटर पर टाइम है 7 to 8 और 6:30 to 7:30। बिल्कुल अपने मन को कहने नहीं देना कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपकी तरह ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यहां बैठे भी होंगे इस समय इस हॉल के अंदर, वो हर रोज आते हैं उस मुरली क्लास के लिए। एंड हर रोज मीन्स हर रोज। कौन कौन बैठे हैं यहाँ जो हर रोज मुरली क्लास जाते हैं? डॉक्टर्स हैं और हर रोज मुरली क्लास जाते हैं। हाँ चलो देख लो, सभी लोग उठाओ, डॉक्टर संगीता नितिका हाथ उठाओ, और उठाओ, देखो ये सब लोग मुरली क्लास आते हैं और उतना ही मेहनत करते हैं, उतना ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हर रोज करने से जो खुद के अंदर भरते हैं वो सिर्फ खुद को नहीं मिलता, वो सारा दिन पर सबको देते रहते हैं। तो अगर कोई भी चीज कोई एक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है कैसे टाइम निकालें, कैसे जाएं, वो तो हर एक को लगता है, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी प्रोफेशनल हो। हमें अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है 2 मंथ्स के लिए। 2 मंथ्स के बाद हमें हमारी थॉट्स इतनी सॉर्टेड मिलती हैं, हमें अपनी वाइब्रेशंस इतनी उठती हुई दिखती हैं कि हमें टाइम निकालना नहीं पड़ता, वो टाइम हमारे पास बढ़ता जाता है। So we need 2 months for the experiment, then we get the result, and our result is our truth. उसके बाद आप कहेंगे मेरा बिना जाए नहीं चलता, I have to go, नहीं तो मेरा कुछ miss हुआ है। जैसे लोग कहते हैं ना, walk पर नहीं गए तो मेरा कुछ miss हुआ है आज, because it gives you good energizing. तो सिर्फ 2 months के लिए अपने साथ थोड़ा सा strict होकर कर लीजिए। 2 months के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी lifestyle वो routine अपने आप set हो जाएगी। हाँ ये हो सकता है कि वहां आधा घंटा एक घंटा जाने की बजाय आप 3 पेशेंट और देख सकते थे उतनी देर, वो हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप को भर लो तो आप उन तीन को वैसे ही अकोमोडेट कर लोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जो 30 को देखने वाले हो आप उनको हायर एनर्जी देने वाले हो. सो इट्स नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, इट्स ऑल्सो फॉर देम. दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, अपनी डाइट. अन्न का मन पर बहुत असर होता है, इसीलिए बचपन से क्या सुना था, जैसा क्या था, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी. तो सात्विक अन्न, सात्विक अन्न मीन्स वेजिटेरियन डाइट. बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है मेडिकल साइंस में, बहुत डीप बिलीफ सिस्टम. क्या कहता है वो बिलीफ सिस्टम, क्या कहता है वो बिलीफ सिस्टम कि प्रोटीन्स किस में है? ये मिथ को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा सही कर्म नहीं बन रहा है. समाज में बहुत सारे लोग नॉनवेज इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं ये हेल्दी होता है, तो कर्म आपका बन गया. अब ये कर्म आपका बन गया कि आपके कहने की वजह से, आपके कहने की वजह से कि ये नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे आप, ये नहीं खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिल नहीं सकती है, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स बोलते हैं आप. तो ये बोलने की वजह से बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ते हैं, जो छोड़ने शुरू करते हैं तो कोई उनको कह देता है नहीं उस डॉक्टर ने कहा है. सो ऑल दिस नीड्स टू चेंज बिकॉज दिस विल बिकम आर कर्म अदरवाइज. इट हैज प्रोटीन्स, दैट इज नो डिनाइंग दैट, लेकिन प्रोटीन्स विद वॉट वाइब्रेशन, विद वॉट वाइब्रेशन. स्लॉटर हाउस की एनर्जी क्या होती है? आज आपको इस जगह की एनर्जी अच्छी लग रही है, स्लॉटर हाउस की एनर्जी क्या होती है उसको विजुअलाइज कर लें, फील कर लें उसको एक मिनट. स्लॉटर हाउस की एनर्जी क्या होती है? हां जी, फियर, एंगर, पेन, हेल्पलेसनेस, वायलेंस, डेथ. डेड बॉडी की एनर्जी क्या होती है वो तो आपको सबसे अच्छा पता है. एक डेड बॉडी के अंदर क्या होता है? फिर हम उनको ये बोल रहे हैं कि डेड बॉडी हेल्थ देगी? द फंडामेंटल एनर्जी ऑफ डेथ कैन नॉट गिव हेल्थ, द एनर्जी इज ओनली डेथ. और ये तो सिर्फ डेथ भी नहीं है, ये तो हेट्रेड, हर्ट, पेन, वायलेंस, देन डेथ. सो इट्स टाइम टू पॉज. सबसे पहले खुद एक्सपेरिमेंट करें, कम से कम 3 महीना यहां से जाने के बाद, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट मील व्हेन यू रीच होम, क्योंकि अभी 3 दिन से सात्विक खाए, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट मील यू रीच होम 3 महीने के लिए आप वेजिटेरियन डाइट एक्सपेरिमेंट करके देखें. आप सब एम्बेसडर्स हैं ऑफ हेल्थ, जब आप खाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आप ओपनली बोल पाएंगे. कुछ लोग खुद वेजिटेरियन हैं लेकिन बोलते नहीं हैं उसके बारे में ओपनली टू एवरी पेशेंट. पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब कौन सा डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल. हेल्दी लाइफस्टाइल लिख के देनी पड़ेगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. कई हॉस्पिटल्स में ही खिला देते हैं नॉन वेज. ट्रीटमेंट हीलिंग चल रही है उस आत्मा की, वो हीलिंग चल रही है और हम उसको दर्द और डेथ वाली एनर्जी का खाना दे रहे हैं. कैसे? हाउ? हाउ कैन वी फोकस ओनली ऑन वन एलिमेंट दैट इट हैज प्रोटीन्स? वाई आर वी नॉट फोकसिंग ऑन द वाइब्रेशन ऑफ दैट फूड? वो व्यक्ति हील हो रहा है, हील होते समय कौन सी एनर्जी का खाना देना चाहिए? कौन सी एनर्जी का खाना देना चाहिए हील होते समय? उसके परिवार वाले उसके लिए मंदिर गुरुद्वारे से प्रसाद ला रहे हैं, वो हरिद्वार से गंगा जल ला रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं? तो नहीं, इट इज लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी. एटलीस्ट हमारा कर्म है उनको बताना, बाद में उनको क्या करना है वो उनकी चॉइस है, अपना अपना कर्म करते जाओ. हमें अपना कर्म करना चाहिए ताकि हमने हमारी तरफ से राय दे दी, वो राय को लेना न लेना कंप्लीटली उनकी चॉइस है. ऐसा नहीं सोचना कि हम उनको ऐसा बोलेंगे तो वो डॉक्टर चेंज कर लेंगे, ये डॉक्टर तो वेजिटेरियन होने के लिए बोलते हैं सो वाई शुड आई गो देयर. नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे ना सब पता चल, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट. द बिगेस्ट प्रूफ इज एक्सपेरिमेंट. लीव अलोन वाइब्रेशन. आपको यहां बहुत अच्छा लगने वाला है. इट इज सो लाइट द फूड वी हैव बीन ईटिंग, राइट? एनिमल बेस्ड डाइट इज सो हैवी ऑन द गट. फॉरगेट व्हाट इट इज ऑन द माइंड. इट इज सो हैवी ऑन द गट. कहां से हो रही हैं बीमारियां? शुरू कहां से हो रही हैं? टॉक्सिन्स यहां अक्यूमुलेट हो रहे हैं. कहां से अक्यूमुलेट हो रहे हैं? अनडाइजेस्टेड फूड. सिंपल सिद्धांत होता है खाने का, जो चीज प्लेट से जितनी जल्दी साफ होगी वही चीज पेट से भी उतनी जल्दी साफ होगी. इसीलिए अगर आप कच्चा खाओ वो ऐसे ही साफ हो जाता है, फिर आप खाओ स्टीम्ड खाओ बॉइल्ड खाओ वो जल्दी साफ हो जाता है, फिर आप बहुत तेल 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 मसाला मसाला डाल के खाओ वो जल्दी मुश्किल साफ होता है प्लेट से. जो चीज प्लेट से जितनी मुश्किल साफ होती है वही पेट से उतनी मुश्किल साफ होती है. सिंपल सिंपल. और अगर पेट नहीं ठीक से साफ हो रहा रोज, इट इज गेटिंग टॉक्सिन्स, फिर वो बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी लेकर आएगा. सो व्हाई आर वी नॉट गिविंग देम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन? एटलीस्ट हमें उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए ना फिर, कि हाँ जी इसमें प्रोटीन्स हैं, लेकिन इसमें ये और ये और ये भी है, आप प्रोटीन्स इस तरीके से भी ले सकते हैं. सिंपल. अपना कर्म राइट कर दो. और हम सबके पास ये है, बट इट इज जस्ट दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट ओपनली. आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर वेजिटेरियन होंगे बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. जी अभी अगर हम वेस्ट में भी देखें तो बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं और वो लोग तो बहुत ओपनली अब वेजिटेरियन डाइट के बारे में बात करते हैं. वो लोग तो बहुत ओपनली बात करते हैं कि कैंसर है, रीहैब है, मेक इट प्लांट बेस्ड डाइट. तो उतना ही ओपनली हम भारत की संस्कृति है, हम भारत की संस्कृति है. भारत की संस्कृति को पता है सात्विक, राजसिक, तामसिक. भारत की संस्कृति को पता है कि जब नवरात्रे होते हैं लाइट रहना है, हील करना है, डिवाइन फील करना है तो सात्विक खाना खाना है. तो जब किसी की हीलिंग चल रही है उसको लाइट, एनर्जेटिक और वाइब्रेंट फील कराना है. लेकिन ये सब अभी उनको नहीं बोलना, खुद एक्सपेरिमेंट करना. और जब खुद एक्सपेरिमेंट करना तो फियरलेसली होकर बोलना, डरना नहीं. राइट कर्म का परिणाम हमेशा राइट ही होता है, चाहे वो अभी दिखाई दे या नहीं दिखाई दे. राइट कर्म का परिणाम कभी रॉन्ग हो नहीं सकता. लेकिन देते हुए निस्वार्थ होकर राय दो, ये नहीं सोचो कि ओ ऐसा ना हो वो मेरे पास ना आए क्योंकि मैंने उनको ये बोला. हम उनको फोर्स नहीं कर रहे, हम राय दे रहे हैं. आज आपको यहां राय मिल रही है, फोर्स नहीं हो रहा. लेकिन राय देना हमारा कर्म है. अगर हमने वो कर्म नहीं किया, वी आर नॉट बीइंग राइट. क्यों नहीं हम वो कर रहे? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है. हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि आत्मा के संस्कारों पर कितना असर पड़ता है खाने का, शरीर पर कितना असर पड़ता है उसका. तो वी विल हैव टू टॉक अबाउट इट इन राइट लाइफस्टाइल. दूसरा, जहां तक हो सके, आप हॉस्पिटल रोज जाते हैं लेकिन जहां तक हो सके घर का खाना लेकर जाइए. जहां तक हो सके बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए. बाहर मतलब एनीथिंग बॉट विद मनी. इसकी फंडामेंटल एनर्जी पैसा होती है. उसकी फंडामेंटल एनर्जी में जल्दी करो बिग नंबर्स में खाना बन रहा होता है ना. फंडामेंटल एनर्जी इज हरी एंड स्ट्रेस बिकॉज दे ऑलवेज गेटिंग लेट. उनको कितना खाना बनाना होता है. और जिनका अपना हॉस्पिटल है, अपना नर्सिंग सेंटर है, प्लीज ध्यान रखिए, आपकी आधी हीलिंग आपके किचन से हो सकती है. थोड़ा सा ध्यान वहां दीजिए. वेजिटेरियन खिलाइए उस किचन के अंदर जो हॉस्पिटल में और जो घर में भी है. परमात्मा के याद के शब्द चलाइए. वो सारे शब्दों को खाने में जाने दीजिए. और जो पूरी टीम खाना बनाती है हॉस्पिटल के अंदर, उनको बोलिए कि वो रोज सुबह खाना बनाना शुरू करने से पहले इकट्ठे सारे खड़े होकर एक मिनट के लिए वो अफर्मेशंस करेंगे. और वो याद रखेंगे कि वो सिर्फ खाना नहीं बना रहे हैं, वो हर पेशेंट के लिए प्रसाद बना रहे हैं. ये प्रसाद उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके घर भेज देगा. गिव देम दैट इंटेंट. Give them their role in what they are doing, that they are a part of healing, not just by nutrients, but by vibration. So, food is a very big factor in your hospital. इधर अगर दवाई है तो उतना इक्वल खाना है, नॉट जस्ट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, उसमें लव कितना है, पावर कितना है, पीस कितनी है, उसमें दुआएं कितनी है, उसमें परमात्मा के याद के शब्द कितने हैं। लोग जल्दी घर जाएंगे, भेजना है ना जल्दी घर, जल्दी घर भेजना है, जल्दी घर भेजना है, यस। और उनको बता देना हर पेशेंट को कि वो खाना खाते समय सामने के टीवी पर न्यूज या सीरियल नहीं देखेंगे, उनकी हीलिंग हो रही है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ हीलिंग, नॉट जस्ट मेडिसिन एंड प्रोसीजर, एवरीथिंग इज अ पैकेज, हीलिंग पैकेज है वो। एक्चुअली हॉस्पिटल के रूम्स में जो टीवी होते हैं ना, उस पर न्यूज होनी नहीं चाहिए। अभी तो आजकल हर जगह न्यूज चल रही है, ओपीडी में बैठो न्यूज देख रहे हैं, बाहर कमरे में बैठो। हाउ, वो लोग इलाज करने आए हैं और वॉचिंग, इतना वायलेंस हो गया, इतनी डेथ हो गई, इतना यहां हो गया। नो, कॉन्टेंट इज डाइट, कॉन्टेंट इज डाइट, दैट इज इमोशनल डाइट। वॉट वी वॉच, वॉट वी रीड, वॉट वी लिसन, वॉट वी ईट, वॉट वी ड्रिंक, ये पांच चीजें अंदर जाती हैं आत्मा के पास। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पांच चीजें, ये पांच चीजें हमारे अंदर जाती हैं, हमारे संस्कारों पर, वाइब्रेशन पर असर करती है। इसीलिए प्रसाद इतना इंपॉर्टेंट होता है, लंगर इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो भगवान को याद करते हुए बना है, बड़े प्यार से बना हुआ है। तो बाहर के खाने में पैसे की एनर्जी है, बाहर के खाने में जल्दी जल्दी बनाकर कभी कभी चीखते हुए चिल्लाते हुए बनाने की एनर्जी है। अपने घर पे इसको धीरे धीरे एक नियम बनाइए, अनलेस इट इज एन इमरजेंसी वी डोंट ईट आउट, वी डोंट ईट आउट। हम तो खैर वी नेवर ईट आउट, इट्स जस्ट अ थॉट। 25, 30, 50 साल हो गए सबको यहां पर, खाना नहीं खाया कभी बाहर का, बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि हमें पता है यहां ऊपर किया अपने आप को, यहां किसी के हाथ का बना खाया खाया, जो परेशान है, चिंता में है, दर्द में, और हम ऐसे चले जाएंगे नीचे। खाना इज द इजिएस्ट वे टू कैच द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अनदर पर्सन। इसीलिए सिखाया जाता था, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। मतलब आप उनके लिए खाना बना लो, आपका मन उनके मन से जुड़ जाएगा। और इसीलिए परिवार को जोड़कर रखने के लिए परिवार के लिए खुद खाना बनाना चाहिए। अगर नहीं भी बनाने का टाइम मिलता, कम से कम 15 मिनट रसोई में जाके आखिरी कड़छी घुमा लो, आपके बच्चों को शक्ति मिलेगी, आपके बच्चों को शक्ति मिलेगी। प्यार से परमात्मा को याद करते हुए, उसमें वो संकल्प डालते हुए, ईच वन इज अ पावरफुल सोल, प्योर सोल, ऑलवेज हैप्पी, वी आर यूनाइटेड, बोलते 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 खाना बना दो। और नहीं बना सकते पूरा, 10 मिनट जाओ, ये जरूर करना है। डेस्टिनी रसोई से बदलती हुई हमने देखी है, दिस तरफ भी एंड दिस तरफ भी, दोनों तरफ। कई घरों में खाना बनाने वाला जो भाई कुक होते हैं ना आजकल, तो वो चेंज हो जाता है, घर की डेस्टिनी चेंज हो जाती है। कई घरों में बहुत झगड़े चल रहे होते हैं, कुक चेंज हो जाता है, झगड़े खत्म हो जाते हैं। कई घरों में सब कुछ ठीक था, कुक चेंज हो जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। ऐसे नहीं है, जैसा अन्न वैसा मन। एज अ डॉक्टर आपने कभी सोचा नहीं, द लाइन शुड हैव बीन जैसा अन्न वैसा तन, बट इट इज नॉट दैट, इट इज जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, एंड जैसा धन वैसा अन्न। तो ये इस ऑर्डर में ये चार एनर्जीज चलती हैं, धन, अन्न, मन, तन, इसी ऑर्डर में चलती आई है। तो इसीलिए कलयुग में धन कमाने के तरीके में गफलत हो गई है, सब लोग ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा, नॉट टेकिंग केयर ऑफ कैसे पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ टेकिंग केयर ऑफ कितना कमा रहे हैं, तो धन अफेक्ट हो गया। फिर अन्न, क्या खा रहे हैं, कहां खा रहे हैं, मन का ध्यान नहीं रख रहे, इसीलिए तो तन बीमार है आपके पास आ रहे हैं। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दीज थ्री फैक्टर्स, धन, अन्न, मन और तन। तो हमें चारों फैक्टर्स का ध्यान रखना है। आपका धन दुआओं के साथ घर आता है, दुआओं के साथ घर आता है, प्योरेस्ट एनर्जी। इसीलिए पैसे को श्री लक्ष्मी कहा जाता है, नहीं तो वेल्थ को देवी का दर्जा क्यों दिया गया, बिकॉज इट इज मनी कमिंग विथ डिवाइन वाइब्रेशंस। ऑलवेज टेक केयर, लेट द प्रायोरिटी नॉट बी कितना कमा रहे हैं, लेट द प्रायोरिटी बी कैसे कमा रहे हैं। राइट कितना कमा रहे हैं समान आएगा कैसे कमा रहे हैं घर में सुकून आएगा तो जब एक दूसरे से रीस भी करते हैं कंपटीशन भी करते हैं तो इसी भी करते हैं भाई वो कितना कमा रहे हैं हम कितना कमा रहे हैं हम कैसे कमा रहे हैं वी आर नॉट इन अ रेस रेस करेंगे तो अगर सामने वाला ओवर स्पीड करेगा तो आपको भी ओवर स्पीड करना पड़ेगा रेस करेंगे तो सामने वाला अगर लाइफ का रेड सिग्नल तोड़ेगा तो आपको भी तोड़ना पड़ेगा सो क्विट द रेस वी आर नॉट इन अ रेस इट इज आवर जर्नी विद आवर कर्म आवर संस्कार आवर वैल्यूज आवर प्रिंसिपल्स आवर एथिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माई प्रायोरिटी एक सेकेंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी जितना धन कमाया साथ नहीं जाएगा जैसे कमाया साथ जाएगा कितना कमाया बच्चों के पास रह जाएगा कैसे कमाया आपके साथ जाएगा तो इसलिए अटेंशन बहुत अटेंशन वैल्यूज प्रिंसिपल्स और एथिक्स इसकी परिभाषा को ऊपर उठाते जाइए और ऊपर और ऊपर और ऊपर नॉर्मल पे नहीं चलना आप 3 दिन से देख रहे हैं नॉर्मल इज नॉट राइट जो इस समय दुनिया का नॉर्मल है जो इस समय दुनिया का नॉर्मल है इट इज नॉट राइट तो डोंट से दिस इज नॉर्मल ऑल डॉक्टर्स डू इट लेट एवरीबडी डू इट ऑल नहीं एवरीबडी लेट एवरीबडी डू इट आई विल डिसाइड माय प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को करने दो आप आपकी अपनी कॉन्शियंस आपको बताएगी क्या राइट है क्या नहीं है सामने वाला दर्द में आया है आपके पास सामने वाला दर्द में आया है दर्द में आए हुए के साथ कभी भी कुछ भी गफलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब दर्द में कोई चीखता है तो वो चीख ज्यादा जोर से होती है वो ज्यादा जोर से होती है वो आपके पास दो चीजें लेकर आए हैं एक दर्द और एक आंख बंद करके विश्वास इसको ऐसा वैल्यू करके रखिए फिर ये मत कहिए पेशेंट्स हम पर आजकल ट्रस्ट नहीं करते हैं ये कहिए हम ऐसा कुछ करें जो वो आंख बंद करके फिर से ट्रस्ट करें और उसके लिए सबको चेंज होने की जरूरत नहीं है ओनली आई एंड माय कर्म So, आपके घर जो धन आ रहा है वो आपके पेशेंट्स की दुआओं के साथ आ रहा है यू आर नॉट ओनली अर्निंग मनी फ्रॉम देम यू अर्निंग ब्लेसिंग्स और इसीलिए जो इतना दुआएं कमाते हैं हमेशा सुकून और शक्ति आएगी लेकिन जो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं दैट नीड नॉट नेसेसरली बी द राइट कर्मा तो वो एथिक्स किसको डिसाइड करने पड़ेंगे एक्चुअली अगर देखा जाए मेडिकल एथिक्स कोई वर्ड ही नहीं होना चाहिए मेडिकल एथिक्स कोई वर्ड होना चाहिए इट शुड नॉट इवन बी अ वर्ड इट शुड नॉट इवन बी अ कॉन्सेप्ट व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट इट वो होना ही नहीं चाहिए बिजनेस एथिक्स लोग बात करते थे हम तो सेवा कर रहे हैं सो फॉरगेट व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग और ये भी हो सकता है कि आपके आसपास आपके हॉस्पिटल में अगर सब लोग कुछ कर रहे हों और आप एक अपने सही तरीके से प्रैक्टिस करना चाहें तो लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं लोग आपको तंग भी कर सकते हैं लोग आपके पीठ पीछे भी बहुत कुछ बोल सकते हैं याद रखिएगा वो उनका कर्म है मुझे किस रास्ते चलना है सीधा स्ट्रेट एंड अर्न ओनली ब्लेसिंग्स जब तक धन हाइएस्ट वाइब्रेशन का नहीं आता है तब तक अन मन तन हाइएस्ट पे नहीं जा सकता है नहीं जा सकता है एंड इसीलिए कलयुग इतना नीचे फास्ट जा रहा है क्योंकि धन पर मिलावट हो रही है धन पर तो धन जब आप हाइएस्ट वैल्यूज प्रिंसिपल्स एथिक्स से लाएंगे ना आपके ऑरा में होगा वो यू डोंट हैव टू टेल एनीबडी टू ट्रस्ट यू इट इज देयर इन योर एनर्जी फील्ड सामने वाला मजबूर हो जाएगा आप पर विश्वास करने के लिए क्योंकि आपके ऑरा में दूसरी चीज है ही नहीं हमें ये डर से रहना ही नहीं पड़ेगा कि अगर कल कुछ हो गया तो ये लोग कुछ ये ना कर दें ये केस ना फाइल कर दें होगा नहीं क्योंकि आपके कर्म आपकी प्रोटेक्शन है कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है हम कहते हैं देश कुछ करे सरकार कुछ करे कोई लोग अपने साथ कुछ लोगों को रखते हैं कि वो मुझे संभालेंगे कोई आपको नहीं संभाल सकता। हम सबको सिर्फ एक चीज संभाल सकती है, वो है हमारे किए हुए कर्म। अगर आपके कर्म इतने श्रेष्ठ होंगे, आपने हमेशा हाईएस्ट प्रिंसिपल्स यूज किया होगा, अगर कल कुछ होता भी है तो उनकी फैमिली आपको आकर कहेगी, आई नो यू डिड योर बेस्ट, ये हमारा भाग्य था, आपने सही किया था, ये हमारा भाग्य था। आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कुछ, कर्म अपना काम खुद करते हैं। सत्यता के पास अपने आप को प्रत्यक्ष करने की शक्ति खुद होती है, सत्यता को प्रूफ करना नहीं पड़ता। परमात्मा कहते हैं सत्य वो सूर्य की तरह है जो सदा चमकता है। डोंट हैव टू प्रूव एनीबडी कि आप सच्चे हैं। और कभी अगर लगे कि सच की राह पर चलते हुए कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में कुछ हिलता डुलता है या लोग पीयर प्रेशर, तो हमेशा याद रखना सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है, क्योंकि वो सच की नाव है। और इस समय सिर्फ यही हमारे को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कलयुग और जाएगा, ये एथिक्स में मिलावट और बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों के पास खुशी नहीं होगी, उनकी एक ही प्रायोरिटी होगी, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। और फिर उसमें याद नहीं रहता कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि बुद्धि की शक्ति कम हो गई, तो विवेक ने परखना कि क्या सही है क्या गलत है चेंज हो जाता है। तो जो नहीं है उसको भी राइट बोल के नॉर्मल बोलते हैं। सो हाइएस्ट वैल्यूज प्रिंसिपल्स, नॉट नॉर्मल वैल्यूज प्रिंसिपल्स एथिक्स, हाइएस्ट। और हमारी हाइएस्ट की परिभाषा भी ना हर साल चेंज होती है, क्योंकि जितनी सोल पावर बढ़ेगी हम हाइएस्ट को जाएंगे। तो धन हाइएस्ट वाइब्रेशन, अन वेजिटेरियन, परमात्मा की याद में बना हुआ, फोन और टीवी के साथ नहीं खाना है, अपने संकल्प जरूर रिपीट करना खाने से पहले, परमात्मा को याद करके शुक्रिया करके अपने खाने के अंदर जो हम जैसे ऊपर से डालते हैं ना धनिया, ऐसे कोथिंबीर नहीं डालते, ऐसे आप अपने संकल्प डालो, लेट इट एनर्जाइज योर फूड। और फिर धन अन मन के लिए रोज सुबह हम मुरली क्लास जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तन तो आपका वैसे ही सबकी दुआओं से चलता है, तो भाग्य कैसा बन जाएगा, भाग्य कैसा बन जाएगा। इसीलिए पहले दिन आपको कहा था, खुशहाल है फरिश्तों जैसी चाल है, भाग्य अति श्रेष्ठ है और सत्युगी आत्मा है। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अगेन कम बैक देयर, वाइट डिवाइन लाइट एनर्जी, मैं आत्मा, अपने कर्म और अपने संस्कार हर क्षण अपने साथ लेकर चल रही हूं। मेरे कर्म मेरी सुरक्षा है, मेरे कर्म मेरा भाग्य है। आज भी और आगे भी मैं सत्ययुगी आत्मा, डिविनिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिक सच्चाई, सफाई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, निस्वार्थ भाव, धन कमाना है लेकिन निस्वार्थ भाव और ट्रांसपेरेंसी से, ये धन मेरे घर दुआओं के साथ आता है, ये धन मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की परवरिश करता है, ये सबकी दुआओं के साथ आता है, ये धन मेरे बच्चों के मन की शक्ति बनता है, ये धन मेरे बच्चों की पढ़ाई का साधन बनता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं। आज से मेडिटेशन और रोज का ज्ञान स्टडी मेरे जीवन का नॉर्मल हिस्सा है। इट्स माय लाइफस्टाइल। 3 महीने वेजिटेरियन डाइट। हम सिर्फ वो ही खाते हैं पीते हैं जो आत्मा को शक्ति शरीर को स्वास्थ्य देता है। आई एम एन एम्बेसडर ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। परमात्मा का शुक्रिया, मेरे कर्मों का शुक्रिया जो मुझे ये मौका दिया अपने आप से मिलने का, अपने आप को गहराई से पहचानने का और अब अपने घर का, अपने हॉस्पिटल का शक्ति स्तंभ बनने का। टुडे इज द बिगिनिंग ऑफ अ मैजिकल जर्नी अहेड। इसी साइलेंस में बैठेंगे, चेकिंग, किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगनी है, आत्मा को स्वच्छ करे, लाइट करे, गांठों को खोले, आज करे, अभी करे।